الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے، اسے آیت دین کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورت نہیں پوچھا، سورت نہیں پوچھا، سورت کون سی چھوٹی ہے؟ وہ تو پتا ہی ہے کون سی چھوٹی ہے سورت، سورت کوثر، اور لمبی سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ، جس کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو بات آیت کی ہو رہی ہے، آیت یہ لمبی ہے سب سے اور چھوٹی ہے سورت مدثر کی آیت نمبر 21، سورت مدثر کی آیت نمبر 21۔ اسی طرح قرآن میں ایسی آیت بھی ملتی ہے جس میں سب حروف تہجی آ جاتے ہیں، یہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، آل عمران کی آیت نمبر 154 اور سورت فتح کی 29۔ یہ جو آیت ہے اس میں ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات جو ہیں نا، ان کو تحریر میں لانا یعنی لکھ لینا، اس کی ہدایات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت دن ہو گئے نا یہ پڑھتے ہوئے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والوں کا حال کیسا ہے؟ کل کی آیات بھی بڑی سخت تھی، ہے نا؟ آپ ضرور اس پہ سوچیں کہ ان آیات کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو کیسا پاتی ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں، اور کیا وہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اعلان جنگ کیا ہے، کہیں اس کی زد میں ہم تو نہیں آتے؟ ہمارا کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے؟ آپ ہی بہنوں میں سے ایک بہن نے یہ لیٹر دیا ہے، پر نام تو نہیں لکھا، وہ کہتی ہیں کہ جب سے کل کی قرآن آیات سنی ہیں تو عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں، کلاس کے اندر بھی اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی اور گھر پہنچ کر بھی، اداسی بھی ہے اور افسوس بھی ہے اور رنج بھی ہے۔ تو جو عجیب ذہنی کشمکش ہے، کہتی ہیں گھر پہنچتی میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ آج اس طرح آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں سود کے بارے میں، تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں کہ وہ بولے کہ جو رقم پاکستان بھجوائی تھی گاڑی لینے کے لیے، جس کی رقم منتھلی دینی تھی اور وہ سود بھی دینا تھا، تو وہ آج ہی فون کر کے منع کر دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کوئی گاڑی کا آرڈر دیا ہوا تھا اور کچھ رقم ادا ہو گئی تھی، کچھ رہتی ہے، اور چونکہ وہ سود کے ساتھ تھی، انٹرسٹ پر تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج ہی فون کر کے اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اور لیکن اب سوچ یہ رہے ہیں کہ گھر بھی تو سود پر ہے، گھر ہی نہیں ایک نہیں بلکہ دو ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ ایک کا تو فیصلہ کیا ہے، سوچا ہے کہ ہم بیچ دیں گے، دوسرے میں خود رہتے ہیں۔ ہر گھڑی اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کریں، اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پتہ بھی ہے کہ ایسی باتوں کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو سوچوں پر اور ایمان پر جو ہے وہ مختلف دبیز تہیں بیٹھ جاتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ حالات کے دھارے میں بہہ جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن سوسائٹی کا جب چلن پھرت اور جو ہو رہا ہے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، تو ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ اور لیکن اب ایک قلق ہے، ایک غم ہے، ایک گھٹن ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایک طرف اللہ کا عذاب ہے، آخرت کا ڈر ہے، اور اتنی سخت آیات کے جنگ کا اعلان ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی حل نکال دے، اور مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی بہتر حل ضرور نکل آئے گا اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی شرمندگی سے بچا لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ لیٹر ہے جس بہن نے بھی لکھا ہے، اللہ ان کے سوچ اور جو ان کا جذبہ ہے اس پر ان کو عمل کی توفیق دے، और वो तमाम बहनें और वो तमाम भाई और हमारी सोसाइटी के वो तमाम मुस्लिम घराने जो इसी कश्ती के मुसाफिर हैं, उन सबको भी जो है ना वो सोचना चाहिए, और सोचकर फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जिंदगी वफा ना करे, हो सकता है ईमान की ये हालत ना रहे, हो सकता है कि जो है वो फिर चाहें और कर ना सकें, तो सोचना चाहिए। और मैं बहुत सी ऐसी बहनों को जानती हूं कि जिन्होंने आयात के मुताबिक अपने आप को ढाला, और सहाबा भी तो ऐसे ही थे ना, शराब का हुक्म आया तो प्याला पी रहे थे ना, फिर वो प्याले तोड़ दिए, कारोबार करते थे शराब के, मटके भरे हुए थे शराब से, फिर वो मटके तोड़ दिए हैं। और वो औरतें जो दुपट्टा जिलबाब युद्ध नहीं लेती थी, और युद्धनी ना अलैहिन ना मिन जलाबी बेहना की आयात जब सुनी तो क्या किया उन्होंने, अगले दिन मस्जिद नबी में कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर जो है ना वो चादर ना हो। तो बात क्या है कि वो सुनते थे और आयात की जिंदा तस्वीर बन जाते थे। हम सुनते हैं, सर धुनते हैं, अफसुरदा भी होते हैं, बाज़ औक़ात आंसू भी बहाते हैं, लेकिन अमल का इंतजार करते हैं। हम उस अमल के लिए इंतजार करते हैं, उस बुढ़ापे का जो जिसमें इंसान फिर कुछ भी नहीं कर पाता, उस जवानी के गुजर जाने का जब जज्बे खत्म हो जाते हैं, हम उस बीमारी का इंतजार करते हैं, यानी सेहत के जमाने में अमल नहीं करते, उस बीमारी का इंतजार करते हैं जब इंसान चाहे और फिर कुछ कर ना सके। हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जब दौलत खत्म हो जाए और फकीर हो जाए। तो आइए, ये बहन जो कि एक ईमान का पहाड़ बनकर, जिसका लेटर आज सुबह सुबह मिला है और फोन भी आया कल, तो मैं सोच रही थी कि इसी तरह हर शख्स को जो है ना वो सोचना चाहिए कि जहां जहां जिस भी लिहाज से कमी है, बात सूद की है, जकात की अदायगी में कमी की है, नमाजों में कमी की है, या शराब है। जैसे मुझे भी एक दो दिन पहले किसी ने बताया कि हम के भी उनके यहाँ जो है वो बड़ी दावतों और पार्टियों में शराब अब आम है, तो मुसलमान घराना है। अब आप खुद ही बताएं कि अगर इसी रंग में मुसलमान रंगे जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आप सब लोग, हम कहाँ जाएंगे ना। तो अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। ये एक सवाल है, ये एक जो है वो जगाना है, ये पानी के वो छींटे हैं जो नींद के मातों को बेदार करने के लिए उनके मुंह पर जो है ना वो डाले जाते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो क्या करो। इजा तदायन्तुम, तदायन्तुम जो है इसका रूट वर्ड है दाल या नून, मानी है एक दूसरे को कर्ज देना या लेना। इसके लिए हमें दो लफ्ज मिलते हैं, एक कर्ज का और एक देन का। कर्ज जाती जरूरियात के लिए वापसी की शर्त पर दिया जाता है या लिया जाता है, यानी एक कर्ज का लफ्ज हमें कुरान में मिलता है जाती हाजात के लिए वापसी की शर्त पर, और कर्ज हसना गैर मुय्यन मुद्दत के लिए होता है। दूसरा है देन, किसी भी तरह की अदायगी और इसकी जिम्मेदारी, हाँ ये अदायगी तिजारती कर्जा की हो या जाती कर्जा की या किसी दूसरी चीज की, तो उसके लिए देन जो है ये भी कर्ज की एक शक्ल है। तो देन किसे कहते हैं, किसी भी तरह की अदायगी और इसकी जिम्मेदारी, हाँ ये अदायगी तिजारती कर्जे की हो या जाती कर्जे की या किसी दूसरी चीज की, तो उसके लिए भी देन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो देन क्या है, एक दूसरे को कर्ज देना या लेना, ये भी इसी तरह से है। दे देन इन, देन फिर वही कर्ज, और अगर दीन हो जाए तो क्या है, रास्ता तरीका है ना, वे ऑफ लाइफ। इला अजल इन तक, अजल जो है यही इसका रूट वर्ड है, और मुद्दत के लिए ये लफ्ज जो है वो बोला जाता है, मुकर्रब वक्त और मौजूदा वक्त से उस वक्त तक की दरमियानी मुद्दत। जैसे अजल कौन सी मुद्दत है, जैसे आज कोई चीज तय हो गई तो आज से लेके जब तक वो एग्रीमेंट है, तो उस दोनों तक की दरमियानी मुद्दत। एंड और स्टार्ट की दरमियानी मुद्दत को अजल कहते हैं। वक्त मुकर्रा और मौजूदा वक्त से उस वक्त तक की दरमियानी मुद्दत, मुसम्मन जो मुकर्रा है, जो भी मुकर्रर है, लिख ली है, क्या करो उसको, यानी जो मुद्दत तुमने तय कर ली है उसको क्या करो, फक्तुबुहु, उसको लिख लिया करो। कताबा काफताबा, वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, एक लिखने वाला, बिल अदल, अदल के साथ। अदल जो है ये ज़विल अज़दाद में से है, ये इंसाफ करने के लिए भी आता है और इंसाफ ना करने के लिए भी आता है। और अदल क्या होता है कि पूरा पूरा किसी को उसका हक जो है वो देना। वला याबा, और इनकार ना करे, याबा या पहले भी पढ़ चुकी हैं, हमजा बा या अबा वस्तकबरा फकाना मिनल काफिरीन। कातिबुन, लिखने वाला, रूटवर्ड क्या है इसका, कातिबुन का काफ्ता काफ्ताबा कताबा, तो कातिब फाइल के वजन पर है ना, लिखने वाला है ना, यक्तुबा के वो लिखे, इसका रूट वर्ड क्या है, काफ्ताबा। कमा, जैसा के, अल्लामहू, सिखाया है उसको, तो अल्लामहू का रूट वर्ड क्या है, ऐन लाम मीम, इल्म से है, जानना, आगाही हासिल करना, तो अल्लामा लेटर का इजाफा हो गया ना, शद जिसके नीचे पता चल रहा है दो लाम है, तो सिर्फ इल्म हासिल किया, आगाही नहीं, जैसे इल्म सिखला दिया, अल्लामहू, सिखलाया उसको अल्लाहु अल्लाह ने। तो क्या कहा जा रहा है कि अब फरीकैन हैं और उनके दरमियान जो है ना कोई मुआयदा हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ लेन देन का, कुछ पैसे का, आपस में कुछ तिजारत है या जैसा भी है, कोई फैक्ट्री है, और या ये कि किसी भी तरह का कोई बैनामा है, एग्रीमेंट है, वो लिखा जा रहा है, तो क्या किया जाए। पहली चीज तो है कि उसको लिख लो, फक्तुबू। दूसरी बात क्या पता चली कि इंसाफ से लिखने वाला लिखे, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात क्या पता चली कि जिस शख्स को अल्लाह ने लिखने पढ़ने की सलाहियत दी है ना, जिसको आता है लिखना, तो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। तो आप जरा तसव्वुर करें कि उस जमाने के हालात, जब ये दीन नाजिल हो रहा था, तो उस वक्त तो लोगों को नहीं आता था ना सबको पढ़ना लिखना, है ना, कोई कोई होता था लिखा हुआ, तो अब ये कि उसको लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी है, तो उसको जो है वो इनकार नहीं करना चाहिए। आज के दौर में भी एक ऐसे ही होता है, यूं ही लिखना, ऐसा लिखना नहीं, अब तो बाकायदा इसके ऊपर भी मोहर लगती है, हाँ स्टैम्प लगती है, और हाँ स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना ये सारा काम होता है, तो सही तरीके से वो हो। वल युम लिल, ये नया लफ्ज है, मीम लाम लाम, इसके मानी है एक का बोलना, दूसरे का लिखते जाना, यानी इमला करवाना। इमला ऐसे ही होती है ना, आप डिक्टेशन, एक बोल रहा होता है और दूसरा जो है वो लिखता जाता है। और मीम लाम लाम, इमला करवाना। अमीना हसन इस्लाही साहब ये कहते हैं कि वैसे तो इसके यही मानी है कि इमला करवाना, और कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि इमलाल, इमला, इमलाल जो है ये भी हो सकता है, ये लिखवाने के माने में इस्तेमाल, जैसे तो है ना इमला लिखवाना, लेकिन कहते हैं कि इमलाल के वही मानी है जो के लिखने के हैं या लिखवाने के हैं। तो वैसे अगर गौर करें तो यूं लगता है कि इमलाल के मानी क्या है, कि लिखने वाला जो है ना उसके अंदर जैसे एक कोई कैफियत एक पैदा होती है, जैसे सुस्ती की या इस तरह की, तो फिर वो दूसरा लफ्ज भी उसके मानी में इस्तेमाल होने लगता है। जैसे इमला या इमलाल जो है ना, कहते हैं कि सेम मानी देता है, इमला तो है ही कि इमला करवाना, लेकिन इमलाल भी बाज़ोकात सौती मुशाहबत की वजह से इमला के मानी देने लगा। कि इमलाल के मादे में भी लिखने या लिखाने के मजमून की कोई गुंजाइश नहीं है वैसे इमलाल में, लेकिन यह कि वो इमलाल का मानी जो है वो देने लगा। तो असल फिर इसकी क्या है कि जब इंसान जो है वो कोई भी काम करना चाहता है तो उसको बाज़ औक़ात मुश्किल भी लगता है ना, लिखना या लिखवाना, सुस्ती होती है, काहली होती है। तो अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि चाहिए कि इमला करवाए अल्लाजी वो शख्स अलैहिल हक़ु जिस पर हक है। अब हक किस पर है? जिसने कर्ज लिया है, क्योंकि कर्ज लेने वाला जो है ना उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इमला करवाए। क्यों? इसलिए कि वो जो है उसको पता है कि मैं इतने रुपए का फलां का कर्जदार हूं, और लिखवा जो रहा है, जो कर्ज दे रहा है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है, लिखने वाले की तरह उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो गवाही दे के हाँ भी मैंने इतना ही कर्ज जो है ना वो दिया है, उसमें कोई कमी बेची नहीं होनी चाहिए। देना है ना जिसने, उसका हक है। पैसे तो उसका है जिसको मिलना है, लेकिन जिसने अदायगी करनी है ना, ताकि ऐसा ना हो कि दिया थोड़ा जाए लिखवा ज्यादा लिया जाए, तो उसको चाहिए कि वो लिखवाए। वल युम लिल्लज़ी अलैहिल हक्कु, और लिखे और इमला करवाए वो शख्स जिस पर हक आता है यानी कर्ज लेने वाला। वल यत्तकिल्लाह रब्बहु, और उसे डरना चाहिए अल्लाह से जो उसका रब है। तो यत्तकी जो है वो काफिया। अब आप देख लें कि बात कर्ज की हो रही है और लिखने की हो रही है, दस्तावेज यानी तैयार कर लो, और बीच में तकवा आ गया है ना, कि इसमें अल्लाह का डर रखते हुए तुम लिखना डरना। वला यबखस, और कमी ना करना। यबखस जो है इसका रूट वर्ड है बाखासीन, इसके मानी है कम करना, नाकिस, घटिया वो कहते हैं, और बदले में जैसे थोड़ी चीज देना, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिनहु, इससे शैया कुछ भी, फाइन कान अल्लज़ी अलैहिल हक, पस अगर हो, कान का वनून रूटवर्ड है, अगर हो वो शख्स कि जिस पर हक है यानी कर्ज लेने वाला क्या है, सफीहन सीन फाहा यानी उसको अकल ज्यादा नहीं है या वो नादान है, और दईफन या ज़ईफ है बूढ़ा है, दुआद अनफा कमजोर है यानी, औला यस्ततीउ या उसके अंदर ताकत ही नहीं है इतनी, अयो मिल्ला के वो इमला करवाए, मतलब उसको डिक्टेशन करवानी नहीं आती, उसकी इस्तात ही नहीं है। अयस्तती या इसका रूट वर्ड क्या है, तो वो एन, हाँ ये तो आपको आता ही था माशाल्लाह, कि वो जो है वो इमला करवाए, तो अयो मिल्ला ये वही है जो पहले भी पढ़ा है, तो वो इमला करवाए हुआ, तो वो क्या करे, फल युम लिल, तो इमला करवानी चाहिए, लाम से पता चल रहा है इमला करवानी चाहिए, आखिरी लाम से नहीं, फल फा के बाद जो है, फल युम लिल, पस चाहिए कि इमला करवाए, वली यहू उसका वली यानी उसका कोई जिम्मेदार, उसके घर खानदान में से कोई जिम्मेदार जो है निगरान जो है, बिल अदल, अदल के साथ, तो वो अदल के साथ जो है वो इमला करवाए। तो अदल लफ्ज आपने अभी पहले भी पढ़ा है, ये तवाजुन कायम रखने के लिए भी आता है, दूसरे को इसका हक जो है बिलाग तरीके से देना उसके लिए भी आता है, और जमीन और आसमान देखें तो अदल के सहारे ही कायम है ना, ये ज़विल अज़दाद में से है जैसा कि आपको बताया। इसी तरह किस्त भी आता है लफ्ज, अभी अब आगे पढ़ेंगी तो वो भी ज़विल अज़दाद में से है, इसका मतलब भी यही है कि किसी को उसका हक पूरा पूरा अदा करना। वस्तशिदु, और गवाह कर लो, गवाह ले लो, शीन हादाल और अलिफ सीन ता जो है वो शुरू में लग गया, तो यानी मांगना यानी गवाह जो है वो तुम गवाही करा लो या गवाह ले लो, शहीदैन ने दो गवाह, दो शहीद, मिन रिजालेकुम अपने आदमियों में से। तो रिजालेकुम जो है ये कैद है, तो ये एक शर्त है कि तुम्हारे जो गवाह हैं वो कौन होने चाहिए, तुम्हारे अपने आदमियों में से होने चाहिए। तो रिजाल रिजाल जो है वो किस कैसे आदमी को कहते हैं? मजबूत, मजबूत कवि जिस्मानी तौर पर। हाँ शाबाश। तो असल में ये जो ये लफ्ज है ना कि मिर रिजालिकुम, कि अपने आदमियों में से, तो असल में ये इसके साथ भी तस्निया का नून जो था वो था। तो वो आपको नजर भी नहीं आ रहा। शहीदाई ने ये असल नहीं, रिजाल जो है ये जमाई है, ये तस्निया नहीं है। सही बात। तो रिजाल जो है ये मजबूत आदमी को कहते हैं कि, और असल में शहीदैन ने दो की शर्त पूरी कर दी कि दो आदमी और जो तुम्हारे अपने लोगों में से हो। और बाद लोग कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि मुसलमानों में से हो, तुम्हारे अपने जान पहचान वाले हों, मतलब आम भी हो सकते हैं लेकिन ये कि अपने हों। फ इलम यकूना, पस अगर ना हो, यकूनाने था, इसमें नून जो था वो गिर गया तस्निया का, कि अगर वो ना मिले तो मेरे जो लेने दो आदमी, फरजुलन तो एक आदमी भी हो सकता है, वमराताने और दो औरतें। तो असल बात तो ये है कि दो आदमी होने चाहिए, और अगर दो आदमी ना मिले तो फिर क्या है, एक आदमी और दो औरतें। इसमें लोग बड़े नाराज होते हैं कि दो औरतें एक आदमी के बराबर क्यों हो गई। मिम्मन, जिसमें से, तरदौना, रा द्वाद वौ भी रूटवर्ड है और रा द्वाद या भी, जिनको तुम पसंद करते हो, जिनसे तुम राजी हो। तो राजी जो है इससे मुराद क्या है कि जिनसे तुम जो है वो राजी हो, इससे मुराद दरअसल ये है कि जिनके ऊपर जो है तुम जुमे एतमाद हो, यानी गवाह ऐसे होने चाहिए, फासिक और फाजिर ना हो, अच्छे हों, नेक हों, उनकी इमानत पर तुम्हें जो है वो तसल्ली हो, तुम्हारी पसंद के हों। मिन शुहदाई, गवाहों में से, अंत दिल्ला, के भूल जाए, ये औरत की बात हो रही है कि अगर भूल जाए, एहदाहुमा, इन दोनों में से एक, फतुजक्किरा, तो बस याद दहानी करवा दे, एहदाहुमा, इन दोनों में से एक, अलुखरा, दूसरी को। अब आपको ये तो पता चल रहा है ना, हुमा हुमा के मानी क्या है, क्या है, तस्मिया के लिए दो आया ना। तो अगर एक दो औरतें होनी क्यों जरूरी है कि एक भूल जाए तो दूसरी जो है वो उसको याद दहानी करवा दे, अगर नहीं भूले तो फिर कोई बात नहीं है ना, अगर भूल जाए तो दूसरी उसको याद दहानी करवा दे। वला याबा, और इनकार ना करे, अशुहदाऊ, गवाह, इजा मादऊ, जब उनको बुलाया जाए। कातिब को भी इनकार नहीं करना चाहिए ना, पीछे आपने पढ़ा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गवाहों को भी जब बुलाया जाए तो इनकार ना करें। वला तसअमू, तसअमू जो है इसका रूट वर्ड है सीन हमजा मीम, इसके मानी है उकताहट महसूस करना, किसी चीज के ज्यादा अरसा तक रहने की वजह से इसमें दिल बर्दाश्ता हो जाना, किसी काम को करते करते दिल भर जाना। होता है ना कि कभी एक आप काम कर रहे हैं और वो होता ही नहीं है, और लंबी मुद्दत उस पर जब गुजरने लगती है तो उकताहट महसूस होने लगती है, तो ये है से मुराद, ये थकने की इब्तदाई हालत होती है। आपको उकताहट तो हो रही है पर अभी आपने छोड़ा नहीं है थकने की वजह से। सही है। वला तसअमू, और क्या करो कि तुम लोग जो हो तसाहुल ना करो, उकताहट महसूस ना करो, अंतकतुबूहू, के तुम उसको लिख लो, सगीरन, छोटी हो बात, और कबीरन, या बड़ी हो, इला अजले, इसकी मुद्दत तक। अब होता ही है ना कि जब भी कर्जों का लेन देन होता है तो होता है कि भी चलो जी अब क्या लिखना, कौन कापी लाए, कौन कलम लाए, किसको बुलाएं, कहाँ से वो स्टैम्प पेपर और सारा कुछ, तो हम नहीं लिखते ना। तो बाद ये भी होता है कि तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन, है ना, हम आपस में लेन देन कर रहे हैं ना, तो फिर जो है ना वो भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात मियां बीवी आपस में एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और उसमें जो है भूल जाते हैं। हैं? जैसे एक औरत एक दफा कह रही थी कि मेरे शौहर ने मुझसे ऐसे यानी पैसे लिए, मतलब वैसे तो असल बात यह है कि मियां बीवी जब एक घर में रहते हैं तो सब पैसे इकट्ठे ही हैं, जरूरत नहीं है कि हिसाब किताब जो है वो अलग हो, लेकिन बाज़ औक़ात अगर किसी औरत के पास है, उसके कुछ चीजें हैं, पैसे हैं, कुछ भी हिसाब किताब है, तो यानी साफ शफाफ रखने के लिए हो भी सकता है कि कभी लिया भी जाए एक दूसरे से और लोग लेते भी हैं, तो फिर उसमें भी बाज़ का जब लिखा पढ़ा नहीं जाता तो आपस में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, या ये कि भाई भाई ने लिया एक दूसरे से, या हमसायों ने लिया, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, कर्ज लिया लिखा नहीं, है ना। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि थोड़ा हो या ज्यादा उसको लिख लिया करो, उसकी मुद्दत तक, मुद्दत भी लिख लो कि $5,000 है, $2,000 है, या $1,000 है, और ये 5 साल या 2 साल या 3 साल बाद जो है वो वापिस करने हैं, और फिर उस पर गवाह होने चाहिए, गवाहों के साइन होने चाहिए, तहरीर बाकायदा पूरी लिखी जानी चाहिए। क्यों ऐसा करना जरूरी है? ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये ज्यादा इंसाफ पर मबनी चीज है। अक्सतु किस्त से है, और किस्त जो है ये भी ज़विल अज़दाद में से है, वकीमुल्वज़्न बिल किस्त, है ना। तो ये आपको पता ही है कि किसी को उसका हक पूरा पूरा जो है वो अदा करना, तो ये हक अदा करना और ना करना दोनों तरह भी इस्तेमाल होता है, ज़विल अज़दाद में से है। तो ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ पर मबनी चीज है कि तुम ऐसा कर लो। अब बताएं कि हम ज्यादा जानते हैं अच्छा कि अल्लाह ज्यादा अच्छा जानता है? और अक्सर लोग कहते हैं ना कि कर्ज उधार जो है ताल्लुकात की कैंची है, कि जब तक एक दूसरे से कर्ज लिया दिया नहीं ना, तो ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे थे, अब जरूरत पड़ी तो दे दिया, उसी वक्त से फिर आपस के अब वो मिलते ही नहीं है, फोन ही नहीं करते, फोन उठाते ही नहीं, और ताल्लुकात, और जब भी आप बात करें तो, और फिर ये कि कुछ अर्सा जब ज्यादा गुजरा तो भूल भी गए कि कितने थे, कैसे थे, ये बात तो नहीं थी, इतने तो नहीं थे। मैंने तो खुद कई लोगों को देखा है कि इस वजह से उनके आपस के जो है ना वो झगड़े हुए, और लोग मुकर जाते हैं और भूल जाते हैं, और इतनी खूबसूरती से भूलते हैं कि समझ नहीं आती, बाजू का दोनों तरफ दीनदार लोग होते हैं कि फिर झूठा इसमें से कौन है। तो अब असल बात ये नहीं है कि कर्ज इसलिए लिखे कि यकीन नहीं है दूसरे पर, या वो अच्छा दोस्त नहीं है, या रिश्तेदारी में कोई शुबा हो रहा है, बात यह कि अल्लाह का हुक्म है कि उसको लिख लो, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इंसाफ के ज्यादा करीब है। ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाही, और क्या, वह अकवामु लिश्शहादती, और शहादत कायम होने में इससे ज्यादा सहूलत होती है। अकवामु कौन से है ना, जैसे किसी चीज का खड़ा होना, तो इससे गवाहियां जब हो जाती है ना तो इससे एक चीज स्ट्रांग हो जाती है, इससे शहादत कायम होने में, विटनेस होने में ज्यादा सहूलत होती है। और क्या फायदा होता है, वह अदना अल्ला तरताबू, तो करीब तर है अदना, तो क्या है इसका रूटवर्ड, दाल नून वो भी है इसका रूटवर्ड, और दाल नून या भी है, दुनिया का भी है ना, कि दुनिया करीब भी है और आखिरत दूर है, और दुनिया जलील और हकीर भी है ना, तो दनी उनसे, तो असल में दाल नून वो कि इससे बात से ज्यादा करीब है कि अल्लाह तरताबू, ये आपने पढ़ा था तरताबू, बहुत मोटा सा लग रहा है वैसे, रा या बा, कब पढ़ा था, रैब, जालिकल किताबू ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या फायदा होगा कि कोई शक भी नहीं होगा फिर, तो अब ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, इंसाफ के करीब है, विटनेस का अच्छा सबूत है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें शक नहीं पड़ेगा, कोई आपस में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, मामला साफ रहेंगे, दिलों में गिरहें नहीं पड़ती, है ना। और बहुत अच्छे मुसलमान वही हैं जो के मामलात में अच्छे हैं, और वैसे तो लोग लगता है फलां बहुत अच्छा, फलां बहुत अच्छा, जब आपका मामला पड़ता है ना फिर अंदाजा होता है कि वो कैसा है। तो इसीलिए यह है कि जब किसी के बारे में पूछना चाहो कि वो कैसा है, तो उससे, उसके घर वालों से, उसके बारे में राय लो, उसके करीबी लोगों से कि उसकी डीलिंग कैसी है, ईमानत दयानत के लिहाज से, बात के लिहाज से, सच्चाई के लिहाज से, कैसा खरा है कि खोटा है। और फिर इल्ला, इल्ला जब आता है ना जो पहली बात होती है उसकी नफी करता है, अभी तो सब कहा कि लिख लिया करो और ये बहुत जरूरी है और इंसाफ है और सारी बातें, इससे फायदा होगा, इल्ला मगर, मगर क्या, अंतकूना तिजारतन हादिरतन, कि तुम तिजारत या बिजनेस जो कर रहे हो वो हाजिर कर रहे हो, हाजिर से मुराद क्या है, तजारा तिजारत करना, कि एक हाथ से तुमने पैसे दिए दूसरे हाथ से तुमने चीज ले ली, तिजारतन हादिरतन, के तुम तिजारती लेन देन जो है वो नकद कर रहे हो, हादिरतन नकद कर रहे हो, तुदीरू नहा दौर से है, दाल वौरा दौर, मानी क्या है दौर के, दायरा से है, यानी जैसे आप यूं कर लें कि एक हाथ से लिया दूसरे से दिया तो एक दौरा चल रहा है, हेर फेर है ना, हेर फेर से मुराद यहाँ पे हेर फेर गलत मानी में नहीं है, हेर फेर यानी असल में हेर फेर मानी नहीं है यहाँ पे, बल्कि क्या है कि एक हाथ से लिया दूसरे से दिया तो एक दौर चल रहा है लेना देना, तो दीरू नहा बेना कुम के तुम आपस में एक दौर चलाते हो, ले रहे हो और दे रहे हो, दस्त बदस्त कह लें, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह तक तुबुहा कि अगर तुम उसको ना लिखो, मसलन आप अक्सर जो है आप जाती हैं, आपने कभी देखा हो फूलों का आजकल मौसम है कि फूल लेकर खड़े हुए होते हैं, आप गाड़ी से जा रही होती हैं, अखबार वाला खड़ा हुआ होता है, आप एक हाथ से अखबार लेते हैं दूसरे से पैसे दे देती हैं, एक से फूल लिए दूसरे से आपने पैसे दे दिए, तो ये है कि तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनहुम, आप दुकान पे आप शॉप पे बच्चे को भेजती हैं, वो दूध ले आता है साथ ही पैसे दे देता है, बाजू का तो रसीद भी नहीं लेते क्योंकि इन चीजों की हमें रूटीन में अंदाजा भी होता है और जरूरत भी नहीं होती, तो इसमें अगर एग्रीमेंट ना हो लिखत पढ़त ना हो तो कोई मुश्किल बात नहीं, अगर इसमें भी कहा जाता कि लिखो पढ़ो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती कि अब जरूरत ही नहीं है, तो ये खास उन चीजों की बात हो रही है जो जायदादों के, जैसे जायदाद बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, तो एग्रीमेंट कर लिया जाए, कोई बड़ी चीज है, कोई तिजारती लेन देन है तो पूरी की पूरी रकम है या थोड़ी है सबका लेन देन जो है वो करना चाहिए, वह अशदू इजा तबा या तुम, और तुम गवाह बना लिया करो जब तुम खरीदो फरोख्त करो, जब बै करो, वा याइन वला युदारा कातिबुन, और युदारा का रूट वर्ड क्या है, द्वाद रा रा, और नुकसान ना पहुंचाया जाए लिखने वाले को, वला शहीद और ना ही गवाह को, अब होता क्या है कि जो लिखने वाला है तहरीर और गवाह जो है उनको लोग उठा ही लेते हैं, उनको कत्ल की धमकी देते हैं, उनको कहते हैं तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी कत्ल कर देंगे, तो लोग क्या करते हैं गवाहियां छुपानी शुरू कर देते हैं, है ना, और बाज़ुकात गवाह बिक जाते हैं, कातिब बिक जाते हैं, है ना, तो अल्लाह ताला सोसाइटी को, मुस्लिम सोसाइटी को ये तवज्जो दिला रहे हैं कि कातिब और गवाह को सताया न जाए, एक तो ये कि इस बिना पर कि वो गवाह है तो उसको डराना धमकाना उसके पैसे लगाना कि तुमने सच्ची गवाही नहीं देनी, तो बहुत ऐसा होता है कि जिसकी कुर्सी मजबूत होती है, जिसके हाथ लंबे होते हैं, तो वो कातिब को और गवाह को जो है ना वो सताता है, तो अल्लाह ताला इसे मना कर रहे हैं, वाइन तफालू अगर तुमने ऐसा किया, फाइन नहू फसूकुम बिकुम, तो क्या है तो फिर तो ये तुमने गुनाह किया, फासिक, और फासिक फिस्क से है फास इन फाफ, कि अल्लाह की हदों से निकल निकल जाना, तो पीछे आपने जो फासिक की तारीफ पढ़ी थी सूरत अल बकरा के आगाज में पहले पारे में, तो उसमें ये पढ़ा था ना कि फासिक लोग क्या करते हैं, उसमें अल्लाह की हदों को कैसे तोड़ते हैं, एक तो ये कि जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन रिश्तों को वो काट देते हैं, जमीन पर फसाद करते हैं, युफ्सिदून फिल अर्ध, कि वो जमीन में फसाद करते हैं, तो अब आप खुद ही बताएं कि अल्लाह ताला को तो ये चीज पसंद नहीं है ना कि अल्लाह की जमीन पर जो है वो फसाद किया जाए, और अगर फासिक ऐसा करता है और तो अल्लाह को ये चीज जो है वो कितनी नापसंद है, ये आयत नंबर 27 में है कि अल्लाह के अहद को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देते हैं, और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور زمین میں فساد کرتے ہیں, تو اب یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو پھر تم نے گناہ کا ارتکاب کیا, بڑی غلطی کی تم نے, بہت گناہ کی بات کی, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے اللہ, یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وتق اللہ ویعلمکم اللہ کو اکٹھا پڑھا جائے کہ جو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے تم اس اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو, اور اگر بیچ میں وقف آ جاتا ہے جیسے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سٹاپ کیا جا سکتا ہے, تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے ستایا کاتب یا گواہ کو تو تم نے تو گناہ کیا, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। और वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, पूरी तालीम के बारे में हो सकता है अगर आप सेपरेट करके पढ़े। अब तक जितनी अल्लाह ने तालीम दी है, जितनी कर्ज के लेन देन के बारे में जो हदायत दी हैं, तो इस सिलसिले में तुम अल्लाह से डरो। क्यों तालीम किस लिए दी जाती है? कि इंसान अल्लाह से का डर डरे। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसके अंदर अल्लाह का तकवा और खौफ पैदा होता है। कि इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिही उलमा, के अल्लाह से वो लोग ही डरते हैं जिनके पास जो है वो इल्म होता है, उनके अंदर अल्लाह की खशियत होती है। वल्लाह बिकुल्लि शयइन अलीम, और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर हावी है, हर चीज का इल्म रखता है। वइन कुंतुम अला सफरिन, और अगर हो तुम सफर पर, वलम तजिदु, और तुम ना पाओ, वजदा यजेदु से है पाना, कातिबन कोई लिखने वाला, फरेहानुन, तो फिर जो है वो रहन रखना है। फरेहानुन, इसके माने क्या है? ये है कि इससे मुराद वो चीज है जो कर्ज देने वाले के कर्ज की जमानत के तौर पर जो है वो दूसरे के पास उसको रखवा दे। मकबूजा कब्जे में, काफ बा दाद, जैसे मुट्ठी में कोई चीज दे दी। मसलन ये कि आपने जो है किसी से कर्जा मांग रहे हैं और वो आपको दे नहीं रहा, आपने चूड़ियां पहनी थी, आपने कड़े पहने थे, आपने वो उसको दे दिए कि ये आप मेरी ले लें और मुझे जो है ना वो कर्जा दे दें, तो रहन रखना इसको कहते हैं, गिरवी रखना। बाज औकात जो है कोई अपना घर कर्जे में दे देता है, रहन में दे देता है कि ये रख लें और जब मैं कर्जा वापस दूंगा तो आप मुझे ये दे दें। बाज औकात कोई अपनी कोई भी कीमती चीज, काश्तकार लोग अपनी गाय भैंस वगैरह भी रख देते हैं, कुछ भी इस तरह चीजें। तो फरेहानुम मकबूजा, तो रहन बिल कब्ज पर मामला जो है वो किया जा सकता है। तो अब इससे जाहिरी तौर पर देखें तो यूं लगता है कि सफर में ऐसा कर लें कि गिरवी रख लें, है ना। और ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि सफर में जब जरूरत पड़ गई और दूसरा शख्स जानता नहीं है, तो अब आप अपनी चीज दे के उसे कर्जा ले रहे हैं, है ना। कोट दे दिया किसी ने, बहुत कीमती जैकेट है दे दी, या कुछ भी ऐसे इमरजेंसी इंसान को हालात पेश आ गए। लेकिन आम हालात में भी ऐसा हो सकता है कि दूसरा शख्स अगर नहीं दे रहा या कोई भी मसला है तो। लेकिन इस्लाम ने खास तौर पर कर्ज का जिक्र इसलिए किया कि इस्लाम ये पसंद करता है कि उसके पैरोकार जो हैं अपने दोस्तों को, मिलने वालों को ऐसे ही कर्ज दिया करें बगैर रहन के। और सफर में ऐसा हो सकता है कि उसके जानने वाले जब ना हो तो फिर उसको कोई माल जो है वो जरूरतमंद, अपना कोई माल रख कर जो है वो चीज जो है वो रखे और फिर उसको कर्जा जो है मिले। तो इसलिए कुरान ने खास तौर पर सफर का जिक्र किया, आम हालात का नहीं। वरना हमें जो है वो एक हदीस से भी ये बात जो है वो पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक यहूदी से जो है वो कर्ज लिया था, और कर्ज कैसे लिया था, रहन रखवा कर लिया था। यानी आपने यहूदी को कुछ दिया और उसके बाद जो है फिर उसने आपको कर्ज दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी अबू शहम से उधार अनाज खरीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिरह बतौर रहन इसके पास रखी। ये बुखारी की रवायत है। और ये रहन जो था ये सफर में नहीं था, हजर में था। यानी एक जगह आप जहां रह रहे थे वहीं पे था और बगैर तहरीर के था। क्यों? इसलिए कि एक चीज ही जब दे दी तो उसलिए। आम हालात में वैसे बड़े एग्रीमेंट में लिखा जाना जरूरी है, तो मामूली किस्म का भी था। अब फिर आप देखें, फरमाया वइन अमिना बादुकुम बादन, अगर कोई तुम में से दूसरे पर भरोसा कर ले। अमिना जो है ये हमजा मीम नून, इसके मानी क्या है? अमीना या अमीनू अमनन, किसी पर एतमाद और भरोसा करना। उसके लिए भी आता है जैसे मीम के नीचे जेर, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी रूट वर्ड होते हैं तो उसके एन कलमे की हरकत आप देखेंगे। एन कलमा मिडल वाला है, फेल नहीं, जैसे फेल फे आइन लाम, एन कलमा, तो उसकी हरकत से, या फिर जो है वो एन कलमे की हरकत है उससे आपको पता चल जाता है कि फर्क है, या मजदर की हरकत की फर्क से ना मानी बदलते हैं। तो अमीना या अमीनू अमनन, इसके मानी है किसी पर एतमाद और भरोसा करना, और अमाना अमाना यामिनु अमानतन, अमीन होना। इसी तरह अमाना यामिनु अमनन अमानन, मुतमिन होना, बेखौफ होना। तो ये मुख्तलिफ मानी जो है वो देता है। बहरहाल यहाँ पे आपको मीम के नीचे जो जेर नजर आ रही है तो इससे मुराद क्या है, किसी पर एतमाद और भरोसा करना। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा कर लेता है, एतमाद कर लेता है, और वो एतमाद करके क्या करता है, उसको जाहिर है कि कुछ पैसे दे देता है या वो कुछ चीज रहन रखवा देता है, कुछ भी आपस में अब मामला जो है वो कर रहे हैं, कोई मामला हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, फल यु अद्दी, तो अदा करना चाहिए। अल्लाजी, उस शख्स को, ओ तो मीना, जिसको अमीन बनाया गया है। ओ तो मीना के मानी क्या है, हमजा मीम नून, इसका रूपट क्या है, हमजा मीम नून, अमीन भी इसी से है, और अभी जो अमीना है वो भी इसी से है, जिसको अमीन जो है वो बनाया गया है, तो उसको जो है वो क्या करना चाहिए, उसको अदा कर देना चाहिए कर्जा वगैरह, अमानतहू, जो इमानत है उसको चाहिए कि जो उसके इमानत यानी जो कर्जा है वो उसको अदा कर दे। वलियत्तकिल्लाहा, और वो डरे अल्लाह से, रब्बहू, अपने रब से, वला तक्तुमुश शहादता, और तुम गवाही ना छुपाओ, फमन यक्तुमहा, और जो कोई उसको छुपाएगा, कतमा से है, फइन्नहु, तो बस बेशक वो, आसिमुन, उसका दिल, हमजा सा मीम, और ये अमूमन तो गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है जिसका तल्लुक हुकूकुल इबाद से हो, यानी गुनागार, उसका दिल गुनागार होगा, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, अलीम, जानता है, इल्म है उसको, उसको पता है कि तुम जो है वो क्या मामला कर रहे हो।
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.